नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, फ्यूचर प्रूफ। न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रौद्योगिकी स्तंभकार केविन रूस की गैर कथा पुस्तक है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एल्गोरिदम और स्वचालन के दौर में मनुष्यों की भूमिका पर विचार करती है। इसका केंद्रीय प्रश्न केवल यह नहीं है कि कौन सी नौकरियां बदलेंगी, बल्कि यह है कि व्यक्ति और समाज ऐसी तकनीक चुने और इस्तेमाल करें जिससे मानवीय क्षमता कमजोर न हो। रूस उस लोकप्रिय सलाह को चुनौती देते हैं जिसमें लोगों से मशीनों जैसी दक्षता, निरंतर उत्पादकता और आंकड़ा आधारित व्यवहार अपनाने को कहा जाता है। उनके अनुसार अधिक उपयोगी दिशा उन गुणों को विकसित करना है जिन्हें मशीनें आसानी से नहीं दोहरा सकती, जैसे विवेक, सहानुभूति, रचनात्मकता, संबंध और नैतिक जिम्मेदारी। पुस्तक 9 नियमों के माध्यम से काम, ध्यान, फोन उपयोग और सामुदायिक भागीदारी के व्यावहारिक पक्षों को जोड़ती है। इसका स्वर न तो तकनीक विरोधी है न ही अंध आशावादी। फ्यूचर प्रूफ का उद्देश्य पाठक को बदलाव से डराने के बजाय यह समझाना है कि स्वचालन के बीच मानवीय निर्णय और सार्वजनिक जवाबदेही क्यों निर्णायक रहेंगे। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, मशीनों की नकल नहीं, विशिष्ट मानवीय क्षमताओं का विकास। फ्यूचर प्रूफ का सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि स्वचालन से बचने की रणनीति मशीनों से उन्हीं की शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करना नहीं हो सकती। यदि किसी काम का मूल्य मुख्यतः गति, दोहराव, पूर्वानुमेयता और लागत घटाने में है, तो सॉफ्टवेयर या मशीन के लिए उसमें बेहतर होना अपेक्षाकृत आसान है। इसलिए रूस लोगों को अपनी उपयोगिता को केवल दक्षता से नहीं मापने के लिए कहते हैं। वे ऐसे काम की ओर ध्यान दिलाते हैं जिसमें मौलिक विचार, सामाजिक समझ, संदर्भ आधारित निर्णय और दूसरे लोगों पर प्रभाव शामिल हो। यह तर्क तकनीकी कौशल को बेकार नहीं बताता। तकनीक को समझना उपयोगी है, पर केवल तकनीकी प्रशिक्षण अपने आप में सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। असली प्रश्न है कि व्यक्ति अपने ज्ञान को किसी वास्तविक मानवीय समस्या, संबंध या अनुभव से कैसे जोड़ता है। पुस्तक की दिशा इसीलिए रचनात्मकता और सहानुभूति को सजावटी गुण नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षमताएं मानती है। यह दृष्टि करियर सलाह को व्यापक बनाती है। पाठक को अपने काम के उन हिस्सों की पहचान करनी होती है जहां वह व्याख्या, भरोसा, कल्पना या जिम्मेदार निर्णय जोड़ सकता है। ऐसी भूमिका में व्यक्ति मशीन का निष्क्रिय विस्तार बनने के बजाय तकनीक के उपयोग का सक्रिय निर्धारक बनता है। दूसरा, मशीन ड्रिफ्ट से बचना और एल्गोरिदमिक फैसलों पर विवेक बनाए रखना। रूस मशीन ड्रिफ्ट की अवधारणा के माध्यम से उस धीरे धीरे होने वाले बदलाव को रेखांकित करते हैं जिसमें मनुष्य सुविधा के कारण अपना निर्णय एल्गोरिदम को सौंप देता है। यह केवल कार्यस्थल की समस्या नहीं है। सुझाव देने वाले तंत्र यह तय करने लगते हैं कि हम क्या देखें, किसे सुनें, क्या खरीदें, किस मार्ग से जाएं और किन लोगों को विश्वसनीय माने। ऐसे तंत्र उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उनकी सिफारिश को निष्पक्ष, सत्य मान लेना जोखिमपूर्ण है। एल्गोरिदम उपलब्ध आंकड़ों, चुने गए लक्ष्यों और पहले से मौजूद सामाजिक पैटर्न पर काम करते हैं, इसलिए वे पूर्वाग्रह को दोहरा या मजबूत भी कर सकते हैं। पुस्तक का आग्रह हर स्वचालित निर्णय को अस्वीकार करना नहीं, बल्कि मानव निगरानी और प्रश्न पूछने की आदत बनाए रखना है। व्यक्ति को समझना चाहिए कि किसी प्रणाली का लक्ष्य क्या है, वह किन बातों को मापती है और उसके परिणाम किसके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। कार्यस्थल में इसका अर्थ केवल प्रदर्शन, अंक या स्वचालित निर्देशों का पालन न करना है। नागरिक जीवन में इसका अर्थ भर्ती, पुलिसिंग, ऋण या सूचना वितरण जैसी प्रणालियों में जवाबदेही की मांग करना है। इस प्रकार मशीन ड्रिफ्ट का प्रतिरोध व्यक्तिगत स्वायत्तता के साथ साथ संस्थागत न्याय का प्रश्न भी बन जाता है। तीसरा, आश्चर्यजनक, सामाजिक और दुर्लभ काम को स्वचालन जोखिम से अलग समझना। पुस्तक काम के भविष्य को केवल पेशों की सूची के रूप में नहीं देखती। रूस का उपयोगी मानदंड है कि ऐसा काम खोजा या बनाया जाए जो आश्चर्यजनक, सामाजिक और दुर्लभ हो। आश्चर्यजनक काम में परिणाम पहले से पूरी तरह अनुमानित नहीं होता। उसमें नए विचार, अनपेक्षित स्थितियों से निपटना या अलग दृष्टिकोण देना शामिल हो सकता है। सामाजिक काम में भरोसा, सहयोग, देखभाल, बातचीत और संबंधों की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। दुर्लभ काम वह है जिसमें अनुभव, प्रतिष्ठा, विशिष्ट ज्ञान या ऐसी क्षमता हो जिसे जल्दी से मानकीकृत नहीं किया जा सकता। ये तीनों गुण हर नौकरी में समान रूप से मौजूद नहीं होते, लेकिन इन्हें किसी भूमिका में बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, नियमित सूचना तैयार करने वाला व्यक्ति केवल मशीन निर्मित मसौदे को आगे भेजने के बजाय उसके अर्थ, जोखिम और ग्राहक या समुदाय पर प्रभाव की व्याख्या कर सकता है। यह विचार इस भ्रम को भी तोड़ता है कि स्वचालन केवल शारीरिक या कम वेतन वाले कामों को प्रभावित करेगा। कार्यालयी और रचनात्मक कामों के दोहराव वाले हिस्से भी स्वचालित हो सकते हैं। रूस की सलाह इसलिए पेशे के नाम से अधिक काम की संरचना पर केंद्रित है। पाठक को देखना चाहिए कि वह केवल निर्देशों का अंतिम छोर तो नहीं बन रहा या अपने काम में निर्णय, संबंध और विशिष्ट योगदान जोड़ रहा है। चौथा, ध्यान को क्षमता मानना और फोन के साथ जानबूझकर दूरी बनाना। फ्यूचर प्रूफ में ध्यान को एक महत्वपूर्ण मानवीय क्षमता माना गया है, क्योंकि डिजिटल मंच अक्सर उपयोगकर्ता का ध्यान अधिक से अधिक समय तक बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। लगातार सूचनाएं, स्वतः चलने वाली सामग्री और अंतहीन स्क्रोलिंग व्यक्ति को प्रतिक्रिया देने की आदत में डाल सकती हैं। रूस के लिए समस्या केवल समय की बर्बादी नहीं है। बिखरा हुआ ध्यान गहरे विचार, रचनात्मक कार्य, सुनने की क्षमता और स्वतंत्र निर्णय को कमजोर करता है। जब किसी व्यक्ति की रुचियां और भावनाएं लगातार बाहरी संकेतों से संचालित हों, तो वह तकनीक का उपयोग करता कम और उसका उत्पाद अधिक बन जाता है। फोन को पदावनत करने का अर्थ फोन त्याग देना नहीं है, इसका अर्थ उसे जीवन के केंद्र से हटाकर एक सीमित उपयोगी उपकरण बनाना है। इसी से जुड़ा नियम जीवन में कुछ घर्षण जोड़ने का सुझाव देता है। मसलन, स्वतः चलने वाली सुविधा बंद करना, आवेगपूर्ण खरीद या साझा करने से पहले रुकना और ध्यान मांगने वाले अनुप्रयोगों तक पहुंच को कम सहज बनाना। घर्षण आमतौर पर अक्षमता जैसा लग सकता है, पर यहाँ वह सोचने की जगह बनाता है। यह विषय पुस्तक के करियर संबंधी तर्क से भी जुड़ता है। जिस व्यक्ति में एकाग्रता और चयन की क्षमता है, वह जटिल समस्याओं तथा दूसरे लोगों के साथ अधिक सार्थक ढंग से काम कर सकता है। अंत में हैंडप्रिंट, सामुदायिक शक्ति और तकनीक की दिशा तय करने की नागरिक जिम्मेदारी। रूस का तर्क केवल व्यक्तिगत रोजगार क्षमता तक सीमित नहीं रहता, वे हैंडप्रिंट छोड़ने की बात करते हैं, अर्थात ऐसा काम और ऐसा सार्वजनिक जीवन जिसमें मनुष्य की उपस्थिति, देखभाल और जिम्मेदारी दिखाई दे। इसके विपरीत पूरी तरह मानकीकृत और एल्गोरिदम संचालित अनुभव सुविधाजनक हो सकते हैं, पर वे यह छिपा सकते हैं कि निर्णय किसने लिए और उनके परिणामों की जवाबदेही किसकी है। हैंडप्रिंट का अर्थ हर काम हाथ से करना नहीं है। इसका अर्थ है, तकनीक का उपयोग करते हुए भी मानवीय दृष्टिकोण, संपादन, संबंध और नैतिक जवाबदेही को स्पष्ट रखना। इसी कारण पुस्तक समुदाय को भी महत्वपूर्ण मानती है। स्वचालन के लाभ और हानियां बराबर नहीं बंटती, इसलिए अकेले व्यक्तियों से अनुकूलन की पूरी जिम्मेदारी उठाने की अपेक्षा अपर्याप्त है। श्रमिकों, संस्थानों, नीति निर्माताओं और नागरिकों को यह तय करना पड़ता है कि तकनीक किस उद्देश्य से लागू होगी और किन लोगों की सुरक्षा होगी। रूस तकनीक विरोध के बजाय बेहतर तकनीक के लिए संगठित हस्तक्षेप की दिशा सुझाते हैं। यह अंतर महत्वपूर्ण है। केवल भय आधारित विरोध अक्सर कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं करता, जबकि मानव केंद्रित दृष्टि दक्षता के साथ गरिमा, निष्पक्षता और भागीदारी की मांग रखती है। पुस्तक का व्यापक निष्कर्ष यह है कि स्वचालन कोई स्वतंत्र प्राकृतिक शक्ति नहीं है, उसके नियम, प्रोत्साहन और सीमाएं अंततः मानवीय निर्णयों से बनते हैं। निष्कर्ष में फ्यूचर प्रूफ उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो AI और स्वचालन को लेकर चिंतित है, लेकिन केवल नौकरी समाप्त होने या नई तकनीकी कौशल सूची जैसी सतही चर्चा से आगे जाना चाहते हैं। विद्यार्थी इसे बदलते कार्य बाजार को समझने के लिए पढ़ सकते हैं। पेशेवर अपने काम के स्वचालित होने योग्य हिस्सों और अपने विशिष्ट मानवीय योगदान को पहचानने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। माता पिता, शिक्षक और प्रबंधक भी ध्यान, डिजिटल आदतों और तकनीक आधारित निर्णयों के प्रभाव पर इससे उपयोगी प्रश्न पा सकते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह पाठक को अमूर्त भविष्यवाणियों के बजाय रोजमर्रा के चुनावों पर लौटाती है, जैसे फोन का स्थान, एल्गोरिदम पर भरोसे की सीमा, काम की संरचना और समुदाय में भागीदारी। इसका बौद्धिक लाभ यह है कि यह स्वचालन को अनिवार्य नियति मानने से रोकती है। रूस मानते हैं कि तकनीक बदलाव लाएगी, पर वे जोर देते हैं कि उसके डिजाइन और उपयोग के पीछे संस्थागत तथा मानवीय विकल्प होते हैं। इसी कारण यह पुस्तक कई तकनीक पुस्तकों से अलग है। यह न तो केवल भय पैदा करने वाली चेतावनी है, न ही उत्पादकता बढ़ाने का नुस्खा और न ही केवल कोडिंग सीखने की सलाह। इसका केंद्र मानवीय गरिमा, निर्णय और संबंध है। फिर भी पाठक को इसकी सीमा भी समझनी चाहिए। व्यापक आर्थिक असमानता, श्रम सुरक्षा और नीतिगत सुधारों के लिए पुस्तक के व्यक्तिगत नियम पर्याप्त समाधान नहीं है। इसके बावजूद व्यक्तिगत आदत और सामूहिक जिम्मेदारी को एक ही ढांचे में रखने के कारण फ्यूचर प्रूफ तकनीक के युग में मानवीय भूमिका पर एक संतुलित और विचारोत्तेजक मार्गदर्शिका बनती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं केविन रूस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।